सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वर्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् सिद्धादद्धट्टमला विशुद्धबुद्धिये लद्धसौवर्था तिहुवनशिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सर्वे तिहुवनभवनपसर्य पच्छक्खवबोहकिरणपरिवेढो उयो वियणत्थवणो अरहन्तदियायरो जयहु तिरयणखगणिहाये णुत्तार्यमोहसेणशिरणिवहो आयरिय राउपशिवौ परिवालिय भविय जियलो अन्नाणन्दयारे अणोरपारे भवन्त भवियाणम् उज्जो जेहि कौ पश्यन्तु सया उवच्छाया दुहतिवति साविनडिय तिहुवन भवियाण सुठुरायेण परिठवियाधम्मपवा सुवजलवाणपयाणेन सन्धार्यशीलहरा उत्तार्य चिरपमाददुःशीलभरा साहूजयन्तु सौवे शिवसुहपः सण्ठियाहु निगलियभया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। नौवीं पुस्तक जो चतुर्थ खंड, उसमें कृति अनुयोग द्वार चल रहा है। अभी हम आते हैं पृष्ठ संख्या 76 पर। ज्ञान की प्रधानता से रिद्धियों का वर्णन होने के बाद अभी चारित्र की अपेक्षा चारित्र विशिष्ट जीवों की बात चलेगी, तो उसमें कौन कौन सी रिद्धि होती है उसकी बात यहाँ हो रही है। उसमें पहले हमने 15 नंबर के सूत्र में विक्रिया रिद्धि की बात देखी है, तो उसमें विक्रिया रिद्धि 8 प्रकार की है, अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामरूपित्व। हमने देखा था कल कि शरीर को संकुचित करके परमाणु जैसे करना, वो अनिमा यानी छोटा कर देना, बहुत बड़ा मेरु पर्वत समान सदृश उसको धारण करना, तो महिमा रिद्धि कहलाती है। बड़ा होने पर भी अत्यंत हल्का कि मकड़ी के तंतु पर भी चले तो उसको लघिमा कहते हैं, और भूमि पर रहकर हाथ से चंद्र सूर्य बिंब को छूने की शक्ति, वो प्राप्ति रिद्धि कहते हैं। प्राकाम्य रिद्धि में हमने देखा था कि पर्वत से अंदर या पृथ्वी के अंदर से इसी देह के साथ वो अंदर चला जाए, बाहर आ जावे और वहाँ के जीवों को बाधा नहीं पहुँचाते हुए ऐसा करते हैं, तो उसको कहते हैं वो प्राकाम्य रिद्धि, पृथ्वी में से गमन करने की रिद्धि। अब ईशित्व और वशित्व की भी बात हमने देखी थी कि जो अन्य ग्राम नगर एवं खेड़े वगैरह के भोगने की शक्ति है वो ईशित्व कहते हैं, और मनुष्य हाथी सिंह वगैरह अपनी इच्छा से उनको बरताने की शक्ति यानी उसको अलग अलग वश करने की शक्ति, उसको वशित्व कहें, और इच्छित रूप का ग्रहण करना उसका नाम है कामरूपित्व। काम यानी इच्छा, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो उसको कामरूपित्व कहते हैं। अब शंका चलेगी यहाँ से, ईशित्व और वशित्व के विक्रियापन कैसे संभव है, विक्रिया रिद्धि में इसको क्यों अंतर्भूत किया है? कहते हैं क्योंकि नाना प्रकार गुण व रुद्धि युक्त होने का नाम विक्रिया है। अनेक विविध प्रकार के गुणों से और रिद्धियों से युक्त होना उसका नाम विक्रिया है। अतएव दोनों के विक्रियापने में कोई विरोध नहीं है। विक्रिया में केवल छोटा बड़ा हल्का भारी इतने ही नहीं समझना, ये अन्य को उसके ऊपर यानी वश कर लेना या उनको भोगने की सामर्थ्य जो है, ईशित्व यानी वो ऐश्वर्य जो है, जैसे ईश्वरपना, जैसे एक ग्राम नगर खेड़ा वगैरह भोगने की शक्ति है ना, क्या उस पर प्रभुत्व हो, हाँ ईश्वरपना। अब ये हमने 8 रिद्धियां देखी, तो किसी के एक रिद्धि होगी अलग अलग, तो किसी को एक होगी, किसी को दूसरी होगी, किसी को तीसरी होगी, तो ये तो 8 हो जाएगी। किसी को दो दो हो सकती है, तो यहां अभी एक संयोगी, दो संयोगी, तीन संयोगी, 8 संयोगी तक ये अलग अलग रिद्धियां कितनी हो सकती है उसका हिसाब लगाएंगे। जैसे 8 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, हम उसको ए बी सी डी नाम देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। हर एक को एक एक बार लेंगे तो उसको एक संयोगी कहेंगे, यानी प्रत्येक भंग कहते हैं, वहाँ कोई संयोग नहीं है, फिर भी अन्य को द्विसंयोगी त्रिसंयोगी कहा, इसलिए इसको भी एक संयोगी कहा, परंतु उसका नाम है प्रत्येक भंग। प्रत्येक भंग ने एक एक अलग अलग आप पकड़ो तो एक एक हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। अभी द्विसंयोगी यानी दो दो की जोड़ी, इसमें कितने हो सकते हैं दो दो की जोड़ी? देखो हमेशा ऐसा नियम है, ए का उसके आगे वाले के साथ जोड़ी लगाना, तो ए को छोड़कर आगे कितनी संख्याएं हैं? 7 है, तो ए के साथ 7 हो गए भंग। बी के भंग कितने हो गए? बी के साथ कोई एक जोड़ दो तो 6 हो जाएंगे। सी के साथ 5 हो जाएंगे, डी के साथ 4 हो जाएंगे, ई के साथ 3 हो जाएंगे, एफ के साथ 2 हो जाएंगे और जी के साथ 1 हो जाएंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी 1 से 7 तक लगातार। अभी इसकी टोटल करना है, उतने भंग द्विसंयोगी हो गए। अपनी भाषा में 8 यहाँ है बातें, 8 में से एक कम करना 7 हुआ है ना, द्विसंयोगी भंगों की संख्या निकालनी है, तो 8 अपना गच्छ या 8 अपनी टोटल है, उसमें से एक माइनस करो 7 रहे। अभी 1 से 7 की टोटल, इसको कहते हैं 7 का संकलन धन। 1+2+3+4+7 तक लेना है, उसका आसान तरीका अगर हमको निकालना है तो 7 और उसके आगे की संख्या से उसको गुणा करना है, 7 × 8 और उसके नीचे 1 × 2 करना, जो संख्या आएगी वो डायरेक्ट हमें टोटल मिलेगी। हाँ, द्विसंयोगी के 8 अगर हम मूल बातें लेते हैं तो द्विसंयोगी भंगों की संख्या कितनी होगी? तो हमने ये 2 का यहाँ भाग 7 × 28, तो 28 द्विसंयोगी भंग हो गए। अब 3 संयोगी भंग निकालने हैं, तो 3 संयोगी भंगों के लिए क्या करना? अभी 2 माइनस करना, ए बी और फिर आगे के निकालेंगे, तो 2 माइनस करना तो 6 आए, तो 6 का संकलन धन कितना होता है, यानी 1 से 6 तक की टोटल, 1+2+3 इस तरह से, तो 6 को निकालना है। तो त्रिसंयोगी में उसका 2 बार संकलन धन निकालना है, तो 6 × 7 × 8 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3, 3 × 2 = 7, 2 × 7 = 2, तो 56 हो जाएंगे। इसी तरह चतुस्संयोगी भंग निकालने के लिए मूल जो संख्या है 8, उसमें से 3 कम करना, और उसका फिर चार बार वो संकलन धन निकालना। तो इस तरह से अभी हम ही इसको पढ़ेंगे। तो ये आपस में गुणा क्यों किया है उसकी बात हमें समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ एक संयोग का ही दूसरा नाम है प्रत्येक भंग। द्विसंयोग आदि के द्वारा 255 विक्रिया के भेद उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण विचित्र है। अभी एक संयोगी अभी अभी हमने देखे थे 8 होते हैं, द्विसंयोगी 7 × 8 भागीले वो उसका भाग देना 1 और 2 गुना करके तो 28 आते हैं। त्रिसंयोगी भंग निकालने हैं तो त्रिसंयोगी के लिए क्या 3 है ना, तो उसमें से 2 घटाना है, तो 8 में से 2 घटाना तो 6 आते हैं। तो 6, 7 और 8 का आपस में गुणा करना और उसको 1, 2 और 3 का गुणा करके उसके भाग देना, 56 आते हैं। चतुस्संयोगी भंग जो है अभी ऊपर 5 × 6 × 7 × 8 और नीचे 1 × 2 × 3 × 4 वो 70 हो जाते हैं। पंचसंयोगी भंग फिर ऊपर 4, 5, 6, 7, 8 और नीचे 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ फिर भी 56 आता है दोबारा। षट संयोगी आएंगे 28, वही 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 और नीचे 1, 2, 3, 4 ऐसे 6 तक। सप्त संयोगी है वो नीचे 1 से लेकर 7 तक गुणा करना और ऊपर 2 से लेकर 8 तक गुणा करना, ये 8 आते हैं। अष्ट संयोगी ने 8ों का मिलकर ABCDEFGH सबका मिलकर अगर एक संयोगी भंग एक ही हो अष्ट संयोगी भंग एक होगा। अब सबकी टोटल करना है, 8 + 28 + 56 + 70 + 56 + 28 + 8 + 1 ये 255 होते हैं। 8 बातें हैं ना आपके पास। मैं आपको पूछूं, ये इतना सारा झमेला हमको नहीं चाहिए, ये टोटल भंग कितने होते हैं बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संयोगी भंग आपको मालूम है? विसर ले भूल गए, आपको याद है? अरविंद भाई भूल गए तो आप तो भूल ही जाएंगे। हाँ, आदि विहीन इसके लिए नहीं लगता। हमारे पास 8 बातें हैं ना, तो 2 संख्या को 8 बार आपस में गुणा करो और 1 माइनस करो। जैसे हम सप्त भंग कैसे निकालते हैं, 7 भंगी क्यों कहते हैं, वहां बातें 3 ही होते ए बी और सी। अभी हम निकाल के देखेंगे। देखो ए बी और सी प्रत्येक भंग 3 हो गए है ना, मैंने एक संयोगी है वो 3 हो गए। द्विसंयोगी कितने हो गए, ए के साथ 2 और बी के साथ 1, जिसको हम 2 का संकलन धन कहेंगे वो कितने हो गए, 3 हो गए। और 3 संयोगी 1 होगा तो 7 हो गए ना। तो 7 संख्या हमने कैसे निकाली, 3 चीजें है ए बी और सी, तो 2 × 2 × 2 8 होते हैं, उसमें से 1 कम कर दो 7 होते हैं। तो सब भंगों की संख्या इसे, यही सूत्र हमने श्रुत ज्ञान के बारे में लगाया था। श्रुत ज्ञान के जो अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं टोटल, अक्षर कितने होते, तो 61 − 1 क्योंकि 64 है ना टोटल, स्वर प्लस व्यंजन मिलकर 64 होते हैं। तो 64 ने प्रत्येक को एक एक बार लेंगे तो 64 हो जाएंगे। अभी उसमें द्विसंयोगी करेंगे तो 64 − 63 का एक बार संकलन धन करना, यानी 63 × 64/2 इतना आ जाएगा। और इन सभी की टोटल करने चले जाएंगे, एक संयोगी, 2 संयोगी, 3 संयोगी, 64 संयोगी तक, तो उसकी टोटल कितनी आएगी, तो 64 × 2 को आपस में गुणा करना और 1 माइनस करना। तो 64 × 1 आपस में गुणा करना, यानी 64 जिसका अर्धच्छेद है, ऐसी कौन सी संख्या है, देखो 16 जिसका अर्धच्छेद है ऐसी संख्या कौन सी है? पन्नट्टी है। 32 जिसका अर्धच्छेद है उसका वर्ग है ने बादल। और 64 जिसका अर्धच्छेद है कौन सी? इकट्ठी। 20 डिजिट प्रमाण जो संख्या है उसमें से एक कम करो, इतने ये अलग अलग अक्षरों के ने जिसको हम जोड़ाक्षर वगैरह कहते हैं, सिंगल अक्षर या जोड़ाक्षर सब मिलके इतने अक्षर हो गए। जैसे अंग्रेजी में तो 26 ही होते लेटर्स, वहां तो कैसे जोड़ शब्द नहीं होता ना, जो कुछ है वो स्पेलिंग उसमें मिक्स हो जाता है। इस तरह से ये संयोगों की टोटल कैसे निकालना है ये सूत्र है। उतनी बार जितने जितना का हमने किया ना वो संयोग, अभी हमने 8 को किया है क्योंकि 8 प्रकार के अलग अलग वो अनिमा महिमा वगैरह जो 8 रिद्धियां हैं उनके आपस में एक संयोगी द्विसंयोगी इनकी टोटल कितनी होती है, तो 8 बार 2 से गुणा करो तो 256 का अर्धच्छेद 8 आता है। तो 8 बार 2 से आपस में गुणा करेंगे तो 256 आते, उसमें से एक कम कर दो तो 255 आ जाते हैं। इन्होंने करके दिखाया है यहाँ। इतने कॉम्बिनेशंस अलग अलग होंगे क्योंकि किसी को एक रिद्धि है तो ऐसे एक एक रिद्धि वाले 8 अलग अलग जीव हो गए। किसी को दो दो रिद्धियां हैं तो दो दो में किसी को वो अनिमा महिमा है, किसी को अनिमा लघिमा है, किसी को अनिमा है और वो लास्ट वाला है कामरूपित्व है, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ किसी को, क्योंकि हमने 8 संयोगी भंग भी देखा, किसी को 8 ही हो सकते हैं। हमने देखा था देवों की बात, वैकिरिक शरीर वाले हैं ना उन्हें तो 8 ही होती है, उनकी शक्ति तो 8 ही होती है उनकी में, तो ये गुण तो उनमें भी पाए जाते हैं, परंतु उनको यहाँ नमस्कार नहीं है क्योंकि यहाँ संयतों को नमस्कार कर रहे हैं। मनुष्य होते हुए भी ये रिद्धियां प्राप्त है ना, वो संयतों को प्राप्त है तो उनको संयतों को नमस्कार है। देखो हम देखते आगे, इन 8 विक्रिया शक्तियों से सहित जिनों को नमस्कार है, जिन शब्द डाला है आगे, अकेले विक्रिया वालों को नमस्कार नहीं कहा है। जिसको 8 ही रिद्धियां होती है उनको 255 वो सभी कॉम्बिनेशन, उसको तो 255 नहीं कहेंगे ना, 8 संयोगी का एक भंग कहेंगे उसको, 255 एक जीव का एक साथ कैसे कहेंगे, ये तो अलग अलग जीवों की अपेक्षा हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। 254 होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि ये 254 रिद्धियां नहीं है, कॉम्बिनेशंस वाले जीव है, जिनको एक रिद्धि है, जिनको दो है, जिनको तीन है, जिनको चार है, तो उसके कॉम्बिनेशंस कैसे अलग अलग हो सकते हैं उनकी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना, तीन ज्ञान वाले कौन कौन से जीव हो सकते हैं, मतिश्रुता अवधि मतिश्रुता मन पर्याय, ये दो भेद हुए, तो तीन वाले दो भेद एक जीव में कैसे हो गए, क्योंकि हम तीन कह रहे हैं ना वहां पर, अवधि और मनोपर्य दोनों हो गए तो वो चार वाला भेद हो जाएगा इस तरह से। ये अलग अलग जीवों में कितने अलग अलग प्रकार हो सकते हैं उसकी बात है। यही बात हमने पहले भी देखे थे, किसी को तो वो तो अविरति वाले भेद थे ना, षट काय की हिंसा वाले, किसी एक काय की हिंसा वाला है, कोई पृथ्वी काय का, कोई अग्नि काय का, कोई जल काय का, उसमें भी फिर दो दो का कॉम्बिनेशन, तीन तीन का कॉम्बिनेशन, कोई छह काय का हिंसक है, वैसे ये भेद यहाँ बता रहे हैं। शंका, 8 गुण रिद्धियों से युक्त देवों को यह नमस्कार क्यों नहीं प्राप्त होता है? सूत्र में हमने क्या देखा था? नमो व्यूवण पत्ताणम, और वहां विक्रिया रिद्धि को प्राप्त हुए जिनों को नमस्कार, क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति चली आ रही है, जिनों को ही यहाँ नमस्कार है। उतनी ही रिद्धि चौथे गुणस्थान वाले को होगी, देवों में तो मिथ्या दृष्टि को भी ये होगी, उनकी ये बात नहीं है। तो समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति आने से उनका निराकरण हो जाता है, कारण हुआ है वो करण करना, कारण की देव जिना नहीं है क्योंकि उनमें संयम का अभाव है। यहां से आगे यथा तथा अनुपूर्वी क्रम समझना चाहिए। पहले हमने दूसरा एक नाम देखा था, विपरीत अनुपूर्वी ऐसा कुछ आया था ना, अब यहाँ यथा तथा अनुपूर्वी कह रहे हैं। विपरीत अनुपूर्वी में हमने देखा था कि उल्टा क्रम, और यहाँ आप बता रहे हैं यथा तथा अनुपूर्वी। यथा जैसे हमने ऋषभ से लेकर महावीर तक नाम लिए तो ये सीधा क्रम है, और महावीर से हम उल्टा जाएंगे तो विपरीत क्रम कहेंगे। किसी का भी बीच में किसी का भी नाम लिया, यानी कोई क्रम से नहीं लिया, विदाउट क्रम, कभी मल्लीनाथ का नाम लिया, कभी वासुपूज्य का लिया, यानी ऐसा भी नहीं कि शुरू से फिर अंत तक चले जावे, कभी नेमिनाथ का लिया, तो वहाँ क्या कहेंगे, यथा तथा अनुपूर्वी, एट रैंडम कोई भी एक बीच में से ही कह देना। क्या कहते हैं, सेवेंटी वन पर ना, अधस्तन पूर्वों के पूर्व है वो बात नहीं है, अनुपूर्वी शब्द आया था। अनुपूर्वी ने क्रम से या विपरीत क्रम से ये बात हमने देखी थी, जैसे पहले केवल ज्ञानियों को पहले ही नमस्कार क्यों नहीं किया, ये बात आई थी वहां पर। देखो हम देखते हैं, वो सर्वावधि के बाद की बात आई, पश्चात अनुपूर्वी कहा था 53 पृष्ठ पर। ये बात पहले भाग में अपनी हो चुकी थी धवला की, देखो 53 पृष्ठ पर तीसरी लाइन में पश्चात अनुपूर्वी, पश्चात यानी उल्टा क्रम, अब यहाँ यथा तथा अनुपूर्वी। देखो यहां से आगे यानी इसके आगे जिन जिनों को नमस्कार करेंगे उनमें कुछ विशिष्ट विद्याएं विशिष्ट गुण है, परंतु ऐसा कोई क्रम नहीं है उसमें। जैसे हमने देशावधि में देखा, पहले देशावधि, फिर परमावधि, फिर सर्वावधि, फिर अनंतावधि वगैरह, तो क्रम से लिया था केवल ज्ञानी तक। अभी ऐसा कोई क्रम नहीं है, जो कोई रिद्धियां वगैरह है वो ऐसे ही बता देते हैं, तो इसलिए कहा यहां से आगे यथा तथा अनुपूर्वी क्रम समझना चाहिए, क्योंकि महानता की परिपाटी नहीं पाई जाती। इससे ये महान है, इससे ये महान है, ऐसी कोई परिपाटी, ऐसी कोई वहां बात नहीं है, इसलिए जिनके जो रिद्धियां होती है उसको वैसा ही कथन आता है। अब कहते हैं नमो विद्याहराणम, विद्याधरों को नमस्कार हो, यानी यहां भी विद्याधर जिनों को नमस्कार हो ऐसा ही है, क्योंकि नहीं तो क्या बात आएगी। विद्याधर जो मनुष्य होते हैं, विद्याधर आपने सुना है ना, मनुष्य विद्याधर होते हैं, कहाँ रहते हैं, विजयार्ध पर्वतों में, उसी को वैताढ्य पर्वत भी कहते हैं। तो विजयार्ध पर्वतों के श्रेणी में रहते हैं, वहां उनके नगर पाए जाते हैं। कोई विद्याधर आपके पहचान के है, यानी जो प्रथमानुयोग में जिनके नाम पढ़े थे, हाँ रावण विद्याधर थे, और कौन थे, और हनुमान मोक्ष गए ना, यानी विद्याधर भी मुनि भी हो सकते और मोक्ष भी जा सकते उसी भव में। हनुमान भी विद्याधर थे, तो यहाँ वो विद्याधर यानी अभी वो बताएंगे, विद्याधर भी वो तो सामान्य विद्याधर भी होंगे, वो असंयत तक भी होंगे, और फिर आगे मुनि भी होंगे, या केवल ज्ञानी भी हो जाएगी बाद में। तो यहाँ कहते हैं जाति विद्या, कुल विद्या और तप विद्या के भेद से विद्याएं तीन प्रकार है। पहले विद्या क्या है उसको कहते हैं, जाति विद्या, कुल विद्या और तप विद्या, कहा भी है, अब हम गाथा पढ़ेंगे। ये जाति और कुल क्या होता है उसको भी बताएंगे वो। जाति सुहोई विज्जा, कुल विज्जा तह यहोई तव विज्जा, विज्जा हरे सुएदा तव विज्जा होई साहूणम। इसका अर्थ ख्याल में आया होगा आपको, देखो नीचे लिखते हैं, जातियों में विद्या अर्थात जाति विद्या है, कुल विद्या तथा तप विद्या भी विद्या है, मैंने तीन प्रकार की विद्याएं हैं ये पहले बताया। ये विद्याएं विद्याधरों में होती है, किंतु तप विद्या साधुओं की होती है। तप के बल से विशिष्ट विद्याएं उनके प्राप्त होती है, उसको तप विद्या कहते हैं। इन विद्याओं में स्वकीय मातृपक्ष से प्राप्त हुई विद्याएं, जाति विद्याएं, हमने देखा था ना ये जाति कुल ये शब्द पहले सुने थे आपने कहीं? हाँ, किस में सुने थे? याद है? आठ मदों से रहित होता है समय दृष्टि। हाँ, तो उसमें जाति मद, कुल मद, जाति यानी मातृपक्ष को वो जाति कहते हैं। जैसे हमारे माता, हमारा ये मामा ऐसे, हमारे नाना ऐसे, ये मातृपक्ष हुआ ना, उनका बड़प्पन और उससे अपने को महान मानना, वो जाति मद हुआ। और कुल यानी पितृ की तरफ से अपने को महान मानना, वो कुल मद हुआ। वैसे यहाँ भी वही बात बता रहे कि स्वकीय मातृपक्ष से प्राप्त हुई विद्याएं जाति विद्याएं हैं और पितृपक्ष से प्राप्त हुई कुल विद्याएं कहलाती हैं, उसको कुल विद्या कहना, और माता से प्राप्त हुई उसको जाति विद्या। षष्ठ और अष्टम आदि उपवासों के करने से सिद्ध की गई तप विद्याएं हैं। ये छह उपवास, आठ उपवास आदि जो है उन उसके द्वारा, विशिष्ट तप के द्वारा जो विद्याएं सफल होती है तो उसको तप विद्या कहते हैं। इस प्रकार ये तीन प्रकार की विद्याएं विद्याधरों के होती है, यानी विद्याधर भी वो विशिष्ट तप के द्वारा अनेक विद्याएं हासिल करते हैं। आपने वो सुना तो रामायण यदि आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी ऐसा होता है ना, तो विशिष्ट विद्या हासिल करने के लिए उपवास धारण करके वो तप में बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, विशिष्ट विद्या के लिए वो तप होता है, ख्याल है ना, यानी उसमें कुछ लाभ की इच्छा है। वो मुनियों का तप अलग है, जैसे रावण में भी वो बहुरूपिणी विद्या हासिल करने के लिए वो जब यहाँ युद्ध चल रहा था वो बीच में उन्होंने कितने दिन तक वो किया था। ये चंद्रहास, वो भी चंद्रहास खड़ग प्राप्त हुआ था ना, ये खरदूषण को नहीं, शूर्पणखा, चंद्रमुखा, उसकी उसका पति, उसका नाम क्या है, खरदूषण ही होगा मेरे ख्याल से ना, उसने विद्या प्राप्त की, यानी वो खड़ग प्राप्त हुआ और वहां से लक्ष्मण आ रहा था, वो खड़ग देखा, उसने तो देखा नहीं था अंदर कोई बैठ के कुछ ध्यान कर रहा है, ये ध्यान कर रहा था, वो खड़ग प्राप्त हुआ, विद्या प्राप्त हुई इसको आकर वहां। फिर उसने, ये शस्त्र कैसा दिख रहा है, ऐसा वहां बांबू का वन था ना, तो ट्राई करने के लिए उसने ऐसा घुमाया तो उसके अंदर बैठा हुआ वो मारा गया। रावण का बने भी था वो बहन का, खरदूषण था। तो ये विद्या ऐसे तप के द्वारा विद्याधर भी हासिल करते, कुछ तो उनके तो जैसे हम कहते ना फैमिली में आ गए हैं, माता की ओर से या पिता की ओर से, और कुछ तो तप के द्वारा प्राप्त करते। ये तीनों ही प्रकार की तो विद्याधरों को होती है। अब आगे कहते हैं विद्याधरों के होते, इससे वैताढ्य पर्वत पर, यानी वो विजयार्ध पर्वत पर निवास करने वाले मनुष्य भी विद्याधर होते हैं। वो मनुष्य ही है, मनुष्य गति के ही जीव है, उनके विशिष्ट विद्याएं प्राप्त होती है। वैसे वो विमानों में जाना आना वगैरह विशिष्ट विद्याओं के द्वारा कुछ कुछ बातें करते। सब विद्याओं को छोड़कर संयम को ग्रहण करने वाले विद्याधर भी विद्याधर होते हैं। अब ये विद्याओं का लोभ या आदि वगैरह सारा छोड़कर मुनि भी होते हैं तो वे भी विद्याधर कहलाएंगे, क्योंकि विद्या विषय विज्ञान उनमें पाया जाता है। भले उसका यूटिलाइजेशन करे नहीं करे, मगर वो विज्ञान, उनका उसका ज्ञान तो है उनके पास भी। जिन्होंने विद्यानुप्रवाद को पढ़ लिया है वे भी विद्याधर है। ये बात आई थी, आप उनको क्या कहा था यहाँ, विद्यानुवाद पढ़ने वालों को, उसका अभ्यास करने वालों को हमने नमस्कार किया था कल, उसका नाम क्या था? बोलो, आप कहो, क्यों नहीं याद? वो कौन से कितने नंबर का पूर्व है? दसवें, तो उसको क्या कहा था? दस पूर्वी जिन कहा था। इस तरह से उसको याद करना है। हमने 14 पूर्वी और 10 पूर्वियों को नमस्कार किया ना, तो जिन्होंने विद्यानुप्रवाद को पढ़ लिया है वे भी विद्याधर है, क्योंकि उसमें भी हमने देखा था कितने लघु विद्याएं कितने महाविद्याएं प्राप्त होती उनको, 700 और 500 ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से, है ना? 500 तो रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं और लघु विद्या, हाँ अंगुष्ठ वगैरह 700 थी, हाँ 700 और ये 500, तो ये भी विद्याएं प्राप्त होती तो उनको भी विद्याधर कहने में आता है, क्योंकि उनके भी विद्या विषयक विज्ञान पाया जाता है, ये जात है हुआ जाता है। अब शंका, इन तीन प्रकार के विद्याधरों में से यहाँ किन का ग्रहण है, जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं? हमने क्या क्या देखा, एक तो विद्याधर मनुष्य है, दूसरे विद्याधरों ने जिन मुनि दीक्षा ले ली तो वे भी विद्याधर कहलाएंगे, क्योंकि उसका ज्ञान तो उन्हें भी मौजूद है, और तीसरी बात दस पूर्व पढ़ने पर विद्यानुवाद या विद्यापरम विद्यानुप्रवाद कहा यहाँ, वो पढ़ने पर जो विद्याएं हासिल होती है उनको भी विद्याधर कहा। अभी उसका समाधान, समा में एक मात्रा कम करना, समाधान, वैताड्य पर्वत पर उत्पन्न असंयतों का यहाँ ग्रहण नहीं है, वे तो सारे असंयत हैं, क्योंकि उनके जिनपना नहीं पाया जाता। पारिशेष न्याय से, पारिशेष ने अभी बचे हुए, जो शेष कौन से बचे अभी, शेष दो प्रकार के विद्याधरों का यहाँ ग्रहण करना चाहिए, जो विद्याधर थे और जिन्होंने मुनिपद अंगीकार किया वे भी, और जिन्होंने विद्यानुप्रवाद पढ़कर विद्याएं हासिल की उनको भी यहाँ विद्याधर जिन कहा है। शंका, दश पूर्वधरों का यहाँ ग्रहण यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुनरुक्ति दोष आता है। ये कहते हैं पहले हमने दश पूर्वियों को नमस्कार किया है, तो अभी दसवां पूर्व पढ़कर जो विद्याधर हो गए हैं उनको दोबारा नमस्कार करेंगे तो रिपीटिशन हो जाएगा। तो समाधान करते हैं, नहीं, क्योंकि वहां पर दश पूर्व विषय ज्ञान से उपलक्षित जिनों को नमस्कार किया है, किंतु यहाँ सिद्ध हुई समस्त विद्याओं के कार्य के परित्याग से उपलक्षित जिनों को विद्याधर स्वीकार किया गया, जिसको अभिन्न दश पूर्वी कहा था। विद्याएं हासिल होने पर भी उस विद्याओं के द्वारा जो कार्य हो सकते हैं उन कार्यों का उन्होंने त्याग किया है, तो ये उनके विशिष्ट वहां चारित्र की जो स्थिरता है वो बताने वाला है। पहले उनको नमस्कार किया था क्योंकि ज्ञान था इनका, दस पूर्व का ज्ञान है, उस अपेक्षा ज्ञान के अलग अलग भेदों को लेकर हमने वहां नमस्कार किया था। अब यहाँ पर उनकी दृढ़ता स्थिरता बताते हैं कि इतना विद्या इतनी प्राप्त होने पर भी उसके कार्य के प्रति उन्हें कोई वहां विकल्प भी नहीं उठता, ये बात है। जो सिद्ध हुई विद्याओं से काम लेने की इच्छा नहीं करते, केवल अज्ञान की निवृत्ति के लिए उन्हें धारण ही करते हैं, वे विद्याधर जिन हैं। तो ये पढ़ते ही क्यों है विद्यानुप्रवाद, बस ये ज्ञान का क्या कार्य है, जानना, अज्ञान की निवृत्ति यही उसका फल है। हम कहते हैं ये जानने से क्या फायदा, ये भूगोल जानने से क्या फायदा, फायदा हम किस में गिनते हैं? मेडिकल पढ़े तो भी हम कौन सी चीज किस लाइन को पढ़ना चाहते हैं जिसमें पैसा ज्यादा मिले, पहले तो मेडिकल में जाना, अभी वो झंझट बहुत है, चलो अभी कॉमर्स पढ़ेंगे जल्दी जल्दी वो, हाँ। तो उसी को हमने फायदे वाली चीज मान ली है, तो ज्ञान का होना उसका फल क्या है, ज्ञान में जो चीज नहीं आ रही थी उसका ज्ञान होना यही उसका फल है। ये तो ये न्याय की भाषा में क्या है विषय, क्या है उसका साधन और क्या है फल। ये विषय है हमारे सामने, पेन है। अब इसका साधन हम जान रहे, उसके साधन क्या है, हमारा ज्ञान है। फल क्या मिलना चाहिए, ये ज्ञान में आना ही उसका फल है। तो हम क्या, ये पेन मुझे हासिल हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये तो राग में भटकता है जीव, और वो मिले तो अच्छा, उसी को जानने का फल मान लेते हैं हम। देखो क्या कहते हैं यहाँ, केवल अज्ञान की निवृत्ति के लिए उन्हें धारण ही करते हुए विद्याधर जिन हैं उनके लिए नमस्कार हो। अब कहते हैं नमो चारणानम, चारण रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। ये चारण रिद्धि भी अनेक प्रकार की है, उसको अब बताएंगे। जल, जंघा, तंतु, फल, पुष्प, बीज, आकाश और श्रेणी के भेद से चारण रिद्धि आठ प्रकार की है। यानी इसको ऐसा समझना, जल चारण, जंघा चारण, तंतु चारण, फल चारण, पुष्प चारण, बीज चारण, आकाश चारण और श्रेणी चारण, ऐसे ये आठ की है। कहा भी है, अभी आगे वाली गाथा हम पढ़ते हैं यहाँ पर 21 नंबर के। जल जंघ तंतु फल पुफवी आकाश सेड़ी गई कुसला, अठव्यह चारण गणा पैरिक सुहम पविहरंती। ये राग गया। हाँ चलो, जल जंघा तंतु फल पुष्प बीज आकाश और श्रेणी का आलंबन लेकर गमन में कुशल, यानी जल का आलंबन लेकर गमन में कुशल। तो जल पर से चले जाएंगे, परंतु वहाँ जल कायकों की भी विराधना, त्रस की तो अलग ही, जल में रहने वाले प्राणियों की बात नहीं, जल कायकों की भी विराधना नहीं होगी। मुनि है ना, एक इंद्रियों की विराधना करेंगे तो ये मुनिपना कैसे रहेगा। तो कुशल ऐसे आठ प्रकार के चारण गण, चारण गण, गण कहते ना मुनियों को, आठ प्रकार है तो उनके ऐसे ही चारण समूह का उनको, अत्यंत सुखपूर्वक विहार करते हैं। अत्यंत सुखपूर्वक विहार करते हैं, यानी सहजता से उसमें से विहार करते हैं। जैसे पृथ्वी, हमने पहले भी देखा था ना, पृथ्वी में भी जाओ वो प्राकाम्य रिद्धि वगैरह देखी थी, वैसे यहाँ जल पर से भी चल जाते हैं, उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं है और अन्य जीवों की विराधना तो है ही नहीं है। देखो हम यहाँ देखते हैं, उनमें जो ऋषि, देखो इनकी रिद्धि है ना, अभी इनको ऋषि कहा, पहले हमने देखा था मुनि यति ऋषि वगैरह कहते हैं, प्रवचन सार में भी बात आई थी। उनमें जो ऋषि जलकायिक जीवों को पीड़ा न पहुंचाकर जल को न छूते हुए इच्छानुसार भूमि के समान जल में गमन करने में समर्थ है, वे जलचारण ऋषि कहलाते हैं। जल को न छूते हुए, जलकायिकों को पीड़ा नहीं पहुंचाते हुए जल में से गमन करना, ये जलचारण ऋद्धि होती है। गाथा का नंबर 17 तो सूत्र है और गाथा है। हमने पहले 77 पृष्ठ पर 20 नंबर की गाथा देखी ना, उसके आगे वाली है। ये गाथाएं सारे उन्होंने उद्धरण दिए हैं ग्रंथों के, अन्य ग्रंथों में से लेकर यहाँ प्रस्तुत किया। ये त्रिलोक पन्नति में से लिया है गाथा। देखो अभी आगे हम पढ़ते हैं। शंका, पद्मिनी पत्र के समान, पद्मिनी किसको कहते हैं, कमल को, पद्म कहो पद्मिनी कहो, ये कमल का नाम। कमल पत्र के समान, यानी पद्मिनी पत्र के समान जल के मध्य में गमन करने वाले जलचारण क्यों नहीं कहलाते हैं। पद्मिनी पत्र भी जल में डूबा हुआ भी जल को नहीं छूता, ऐसे कहते ना, उसमें पानी नहीं ठहरता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यह अभीष्ट ही है। अभीष्ट है नहीं, यही अभिप्रेत है, यही बताना चाहते, इष्ट है। शंका, जलचारण और प्राकाम्य इन दोनों रिद्धियों में क्या भेद है। उसका समाधान सघन पृथ्वी, सघन पृथ्वी यानी सॉलिड जो हम कहते हैं ना घन रूप, सघन पृथ्वी, मेरु और समुद्र के भीतर पूरे शरीर से प्रवेश करने की शक्ति को प्राकाम्य रिद्धि कहते हैं और वहाँ जीवों के परिहार की कुशलता का नाम चारण रिद्धि है। प्राकाम्य रिद्धि वाले भी वहाँ के जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, परंतु वहाँ प्रवेश कर सकते हैं इसको प्राकाम्य रिद्धि कहा। और वहाँ के जीवों की परिहार की कुशलता, परिहार की कुशलता यानी उनके बिल्कुल बाधा नहीं पहुँचाने में जो कुशल है उसका नाम चारण रिद्धि कहा। नहीं समझे? प्राकाम्य है वो तो वैकृत शरीर वालों के भी है कि नहीं है? वो आठ प्रकार, आठ ये पूरे औदारिक शरीर के साथ जा सकते हैं, ये तो इनकी रिद्धि है, परंतु वहां जाते हुए वहां के जीवों को कोई ठेस नहीं पहुंचती, उनको कोई बाधा नहीं है, ये इस चारण रिद्धि में लेना। बात तो वही की वही है, प्राकाम्य रिद्धि है और चारण रिद्धि के द्वारा वहां के जीवों को कोई नुकसान नहीं होना। हाँ, रिद्धि उसी को कहते हैं ना। समुद्र के भीतर पूरे शरीर से प्रवेश करने की शक्ति को प्राकाम्य और वहां जीवों के परिहार की कुशलता का नाम चारण रिद्धि है, क्योंकि इसमें से भी यहाँ जल में से जाते हैं, जल के अंदर से भी जाते, केवल ऊपर से जाते हैं, इसे जल में गमन करने, देखो इच्छा अनुसार भूमि के समान जल में गमन करना, ऊपर से चौथी लाइन, जल के अंदर से भी गमन करेंगे तो जल में प्रवेश करना वो प्राकाम्य रिद्धि हुआ और वहां के जीवों का कुछ बाधा नहीं पहुंचाना, उसमें जो कुशलता है परिहार की कुशलता लिखा ना, वो चारण रिद्धि कहलाती है। अब उसी के समान तंतुचारण, फलचारण, पुष्पचारण और बीज चारण का स्वरूप भी जलचारणों के समान कहना चाहिए। देखो भूमि में यानी भूमि के अंदर से पृथ्वी का एक जीवों को बाधा न करके सैकड़ों योजन गमन करने वाले जंघाचारण ऋषि कहलाते हैं और इसी को प्राकाम्य के अंदर हमने प्रवेश कर सकते उसको प्राकाम्य ले ले रहे और वहां के जीवों को बाधा नहीं पहुंचाते हुए चलते हैं उसको चारण रिद्धि कहा है, वो जंघाचारण में आ गए। धूम, अग्नि, पर्वत और वृक्ष के तंतु समूह पर से ऊपर चढ़ने की शक्ति से संयुक्त श्रेणी चारण है, श्रेणी यानी उसकी श्रेणी, उसकी पंक्ति कहते ना, तो धूम के ऊपर से भी ऊपर चढ़ जाएंगे, अग्नि है, पर्वत है, वृक्ष के तंतु है, तंतु के ऊपर से चलकर चले जाएंगे तो ये तंतु चारण कहलाते हैं। चार अंगुलों से अधिक प्रमाण में भूमि से ऊपर आकाश में गमन करने वाले ऋषि आकाश चारण कहे जाते हैं। ये कुनकुंदाचार्य को भी चारण रिद्धि थी। हाँ, ये जमीन से चार अंगुल ऊपर गमन करते। शंका, आकाश चारण और आगे कहे जाने वाले आकाशगामी के क्या भेद हैं? ये दो अलग अलग है ना, आकाश चारण और आकाशगामी। इस शंका का उत्तर कहते हैं, जीव पीड़ा के बिना पैर उठाकर आकाश में गमन करने वाले आकाश चारण हैं, यानी जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती, जमीन पर भी चल रहे तो चार अंगुल ऊपर से चल रहे हैं, जैसे हम पैर एक के बाद एक भूमि पर पटकते हैं, वो तो अधर जमीन के ऊपर ही ऐसे चलते हैं, यानी वो पैर उठाकर चलते हैं और पल्यंकासन, कायोत्सर्गासन, शयनासन और पैर उठाकर इत्यादि सब प्रकारों से आकाश में गमन करने में समर्थ ऋषि आकाशगामी कहे जाते हैं। पल्यंकासन है पद्मासन, पद्मासन में है और ऐसे ही चले जाएंगे आकाश में से, या कायोत्सर्गासन खड़े हैं ना, खड़गासन भी कहते हैं या कायोत्सर्गासन भी कहते हैं, या शयनासन शयन किया और ऐसे ही अधर से चले जाएंगे या पैर उठाकर भी चलेंगे आकाश में से, तो ये आकाशगामी कहते हैं, आकाश ऊपर आकाश में से गमन करना। इत्यादि सब प्रकारों से आकाश में गमन करने में समर्थ ऋषि आकाशगामी कहे जाते हैं। यहाँ चारण ऋषियों के एक संयोग द्विसंयोग आदि के क्रम से 255 भंग उत्पन्न करना चाहिए। देखो सूत्र 15 की टीका, अभी हम ये देखा है। शंका, एक ही चारित्र इन विचित्र शक्तियों का उत्पादक कैसे हो सकता है? क्या कहते हैं, किसी मुनि को कोई अन्य रिद्धि प्राप्त होती है, किसी को अन्य कोई होती है, चारित्र तो एक ही है, तो उसे ये अलग अलग कार्य कैसे देखने में आते हैं, ये प्रश्न है। उसका समाधान नहीं, क्योंकि परिणाम के भेद से नाना प्रकार चारित्र होने के कारण चारणों के बहुत होने में कोई विरोध नहीं है। वो परिणामों की जो विशुद्धि अलग अलग है, उनके भेद भी अलग अलग होते हैं, तो उसके कारण की रिद्धियां भी अलग अलग होती हैं। शंका, जब चारणों के भेद 255 हैं, तो फिर उन्हें 8 प्रकार का बतलाना कैसे युक्त है? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके 8 प्रकार के होने का नियम नहीं है, तथा 255 चारण 8 प्रकार के चारणों से एकांततः पृथक भी नहीं है, यानी सर्वथा वे पृथक है और ये 8 पृथक है, ऐसी बात नहीं है। आठों में ही किसी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक एट ए टाइम हो सकते हैं, तो 8 के ही ये कॉम्बिनेशन से, तो उससे एकांततः पृथक यानी सर्वथा पृथक उसमें से नहीं है। इन चारण जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। शंका, चारणों की 8 संख्या का नियम कैसे बनता है? नहीं, अन्य चारणों का इनमें अंतर्भाव होने से उक्त संख्या का नियम बन जाता है। वह इस प्रकार है, अन्य चारण ने क्या क्या वो बता रहे हैं अभी। कीचड़, भस्म, गोबर और भूसे आदि पर से गमन करने वालों का जंघा चारणों में अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि भूमि से कीचड़ आदि में कथनचित अभेद है, यानी भूमि पर ही वो कहीं कीचड़ है, कहीं और जो कुछ भस्म गोबर भूसा आदि है उस पर से भी गमन कर सकते हैं, उसको यहाँ उसी में अंतर्भूत कर दिया। कुंथु जीव, उद्देही जीव, मत्कुण और पिपीलिका आदि पर से संचार करने वालों का फलचारणों में अंतर्भाव होता है, क्योंकि इनमें त्रस जीवों के परिहार की कुशलता की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। जब फलचारण है, फल पर से गमन करना, तो वहाँ ये त्रस जीव भी पाए जाते हैं, तो उनको भी पीड़ा पहुँचे ही बिना वो गमन करते हैं, उस अपेक्षा से ये कुंथु आदि जो है ना, छोटे छोटे जीव होते हैं ना, मत्कुण, मत्कुण का अर्थ होता है कटमल, पिपीलिका है ने कीड़ी है, पिपीलिका मुंगी, मुंगी मुंगी जैसे चीटी, उसको पिपीलिका कहते हैं। पत्र, अंकुर, तृण और प्रवाल आदि पर से संचार करने वालों का पुष्प चारणों में अंतर्भाव होता है, क्योंकि हरितकाय जीवों के परिहार की कुशलता की अपेक्षा इनमें समानता है। हरितकाय पर से भी चले तो भी उसमें उनकी जीवों की हिंसा किए बिना उस पर से चल जाते हैं। क्या? हाँ, तीर्थंकरों का तो ये 5000 रुद्रधनुष ऊपर चले जाते हैं ना, तीर्थंकरों का तो जमीन पर से गमन होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो मुनियों की बात चल रही है यहाँ पर, उनके तो किसी का कोई हिंसा का सवाल ही नहीं है वहां पर। ओस, ओला, कुहरा और बर्फ आदि पर गमन करने वाले चारणों का जल चारणों में अंतर्भाव होता है, क्योंकि इनमें जल का एक जीवन के परिहार की कुशलता के प्रति समानता देखी जाती है। धूम, अग्नि, वायु और मेघ आदि के आश्रय से चलने वाले चारणों का तंतु श्रेणी चारणों में अंतर्भाव होता है, क्योंकि वे अनुलोम और प्रतिलोम गमन करने में जीवों को पीड़ा न करने की शक्ति से संयुक्त है। इस प्रकार अन्य चारणों का भी इनमें ही अंतर्भाव हो जाना चाहिए, ये समझना चाहिए। अनुलोम यानी आना जाना, ऐसा होना चाहिए। अनुलोम और प्रतिलोम, हाँ, एक दिशा में जाना और फिर वापस उल्टी दिशा में वापस आना, यानी जाना और वापस आना, वो अनुलोम प्रतिलोम। आकाश में से भी गमन करते हैं ना, चारण रिद्धि, जैसे वो सिंह की पर्याय में महावीर का जीव था और वहाँ चारण रिद्धिधारी, वो चार, वो आकाश चारण हुआ। आकाश है नहीं, ऊपर ही समझना नहीं, ये भी आकाश ही है। वो भूमि के ऊपर और आकाशगामी में वो भी आया। आकाशगामी में उनके आसन छोड़ने की जरूरत नहीं है। आकाश चारण में क्या है, वो जैसे हम चलते हैं वैसे वे भी चलते हैं, चार अंगुल ऊपर, और बाकी ऊपर जो आकाश गामी है, आकाश में से ऊपर से नहीं। देखो, पैर उठाकर बिना, सॉरी, जीव पीड़ा के बिना, पैर को बिना नहीं लगाना, ऊपर क्या है देखो, जीव पीड़ाए बिना पादुक खेवे न। क्योंकि बिना उसको अगर लगाएंगे तो जीव पीड़ा के होगा, बिना शब्द जीव पीड़ा के लिए लगाना चाहिए। हाँ, उसमें भी बोलिए, पैर उठाकर भी उसमें शामिल है और ये भी है। देखो, अभी हम यहाँ आ गए 9 नंबर का, अरे नीचे 9, ऊपर 18 होना चाहिए। 17 हुआ था ना अपना, ये 18 लेना। देखो 18 नंबर का सूत्र है, नमो पन्न समणानम, प्रज्ञा श्रवणों को नमस्कार हो। अब आगे पढ़ते 82 पृष्ठ पर, श्रवण शब्द भी आया है, वो मैंने बहुत बार देखा है। श्रमण और श्रमण, श्रवण दोनों शब्द आते हैं, क्योंकि प्राकृत में भी कितनी बार श्रमण भी, श्रवण भी लिया है उन्होंने। देखो 83 पृष्ठ पर 5वीं लाइन में, प्रज्ञा एव श्रवणम एषाम ते प्रज्ञा श्रवणाहा, मिला प्राकृत में। पहले मुझे भी लगा कि वह शब्द गलती से पढ़ा होगा, म चाहिए, परंतु आगे पढ़ने के बाद वो पता चला कि वो श्रवण ठीक है, यानी श्रवण और श्रमण दोनों शब्द आएंगे। अपनी भाषा में तो हम श्रवण शब्द ही ज्यादा करके यूज करते हैं ना, श्रवणों को, प्रज्ञा श्रवण कहो, श्रवण को एक ही बात। अब यहाँ बताते हैं प्रज्ञा के संबंध में और बातें, उत्पत्ति की, वैनयी की, कर्मजा और पारिणामी की। इस प्रकार प्रज्ञा चार प्रकार है, उनमें जन्मांतर में, जन्मांतर यानी अन्य जन्म, पूर्व जन्म की बात है, जन्मांतर में चार प्रकार की निर्मल बुद्धि के बल से विनय पूर्वक 12 अंगों का अवधारण करके, अवधारण करना है ने पढ़ना, देवों में उत्पन्न होकर पश्चात अविनष्ट संस्कार के साथ मनुष्यों में उत्पन्न होने पर, देखो पहले 12 अंगों का धारी थे, चार प्रकार की निर्मल बुद्धि थी और फिर उसके बाद मरकर देवों में उत्पन्न हुए और वहाँ से जिसके संस्कार अभी नष्ट नहीं है ऐसे, यानी वो पहले 12 अंगों का संस्कार चल रहा है, तो अविनष्ट संस्कार के साथ मनुष्यों में उत्पन्न होने पर इस भव में पढ़ने सुनने व पूछने आदि के व्यापार से रहित जीव की प्रज्ञा उत्पत्ति की कहलाती है। हम कहते हैं वो सहज रूप से वो उसके संस्कार वो ज्ञान के वो चलते हैं, ये संस्कार की बात आती है ना, तो हम इसको तो उसको उत्पत्ति की कहा है क्योंकि वो पूर्व जन्म में उन्होंने पढ़ा है। हम लौकिक में भी देखते हैं ना कितने ऐसे कुछ संगीत टैलेंटेड होते हैं, बॉर्न टैलेंटेड, संगीत है या चित्रकला है, तो इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसे हम देखकर भी स्तिमित हो जाते हैं। इवन विज्ञान भूगोल आदि गए, ये भूगोल नहीं फिजिक्स वगैरह उस संबंधी भी ऐसे बहुत से ऐसे देखते छोटे बच्चे हैं और उनको बहुत ज़्यादा गहरा ज्ञान है। तो ये ज्ञान के संस्कार पूर्व में पढ़ा है और अब वो उसके संस्कार चलते हैं, ऐसा देखने में आता है। बुद्धि में हमने देखा था वो कोष बुद्धि बीज बुद्धि उसको लेना, क्योंकि बुद्धि के चार प्रकार वही हो गए, कोष बुद्धि बीज बुद्धि पदानुसारी बुद्धि वगैरह हमने देखे थे ना पहले। यहाँ प्रज्ञा कहे, प्रज्ञा अभी इस भव में जो हुई है बिना पढ़े किसी को ये कैसे अंदर से सूझ पड़ती है, तो उसके वो अविनष्ट संस्कार की बात है। हाँ ये प्रश्न आएगा अभी, प्रज्ञा यानी वो शक्ति है जिसके कारण ज्ञान होता है, ज्ञान तो पर है जानना, ज्ञान में जानना होगा, और प्रज्ञा यानी उसकी विशिष्ट कैपेसिटी शक्ति होगी। आगे इसका प्रश्नोत्तर में आया है स्वरूप, आपका प्रश्न है तो देखते हैं। पेज नंबर 84 पर शंका, प्रज्ञा और ज्ञान के बीच क्या भेद है? गुरु के उपदेश से निरपेक्ष, यानी जहां गुरु के उपदेश की बात नहीं है, बिना उपदेश के ही ज्ञान की हेतुभूत जीव की शक्ति का नाम प्रज्ञा है। ज्ञान की हेतु भी तेने ज्ञान होने में जो शक्ति कार्य कर रही है वो प्रज्ञा है, और उसका कार्य ज्ञान है, ज्ञान यानी जानना, वो तो कार्य है उसका, और प्रज्ञा ने वहां तो किसी ने सिखाया नहीं फिर भी कैसे उसको सूझ पड़ती है, ये प्रज्ञा है। और अभी हमने उत्पत्ति की थी, पूर्व हो के कुछ ज्ञान के संस्कार चले आते हैं। हाँ, धारणा में, धारणा यानी सबका सब याद आना, वो धारणा है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं और बिना किसी के समझाए कुछ बातें ख्याल में आती है, तो इसको हम संस्कार, धारणा यानी हमने पहले पढ़ी थी और अभी याद है, वो धारणा में लेना। सहज ज्ञान नहीं कहना इसको, नहीं नहीं नहीं, पहले पढ़ा है और वो उसकी संस्कार में वो चलता है, अविनष्ट संस्कार है, अविनष्ट संस्कार। अभी इस भव में उसने गुरु का उपदेश नहीं पाया, भले पूर्व भव में उसने तीर्थंकरों के पाया होगा, अष्टोत्तर केवली से पाया होगा, परंतु पूर्व भव में उसको ज्ञान था, तभी तो उसने चार बुद्धियों द्वारा उसको धारण किया था। अभी वैसी चार बुद्धि नहीं फिर भी कितने ही अर्थ, उसके अर्थ कैसे समझ में आ जाते, तो उसके अविनष्ट संस्कार कहा उसको, यह उत्पत्ति की बात है। कहा भी है, विनयेण सुदमधीदम किह विपमादेण हो दिविसरिदम तमुवट्ठादि परभवे केवलनाणं चाहवदी। क्या कहते हैं, विनय से अधित श्रुत ज्ञान, अधित ने जो सीखा है पहले, विनय से अधित श्रुत ज्ञान यदि किसी प्रकार प्रमाद से विस्मृत हो जाता है, तो अभी वो विस्मृत होने के लिए अलग अलग कुछ कारण है, हो सकता है कि अभी उसका वो भव भी पलट गया, दूसरा भव भी आ गया, तो प्रमाद से भूल भी जाता है, विस्मृत होता है, तो उसे उत्पत्ति की प्रज्ञा परभव में उपस्थित करती है। उपस्थित करती है नहीं, वो तो समझाने की बात है। यानी जो उत्पन्न होती है उसको हम उत्पत्ति की प्रज्ञा कहते हैं, और केवल ज्ञान को बुलाती है, क्योंकि 12 अंगों का ज्ञान उसका, वो अविनष्ट संस्कार चल रहा है। तो अभी एक देव का भव करके केवल ज्ञान को बुलाती है ना, उसको केवल ज्ञान हो जाएगा उस भव में। यह उत्पत्ति की चाहिए, उत्पत्ति प्रज्ञाश्रमण, क्या उत्पत्ति की प्रज्ञाश्रमण, ऐसो उत्पत्तिन्न समो। प्रज्ञा उत्पत्ति की हुई, और वो श्रमण को क्या कहा, उत्पत्ति श्रमण कहा उसको, उत्पत्ति बराबर है क्या उत्पत्तिक चाहिए। प्रथम लाइन में उत्पत्ति की वो प्रज्ञा का विशेषण है, तो वैसे उत्पत्ति की लेना चाहिए क्या नहीं चाहिए, की शब्द चाहिए ना बीच में, यहाँ उत्पत्ति लिखा है, ऐसो उत्पत्तिन्न समोनो। उत्पत्ति की वो प्रज्ञा के भेद बताए, की चाहिए ना, हाँ उत्पत्ति की प्रज्ञा, उत्पत्ति की प्रज्ञा है ना, उत्पत्ति की प्रज्ञा श्रमण की शब्द रह गया है, यानी जिसको यह उत्पत्ति की प्रज्ञा है, प्रज्ञा का नाम है, हाँ वही बात बता रही मैं। यह उत्पत्ति की प्रज्ञाश्रमण जो है, वे 6 मास के उपवास से कृश होता हुआ भी उस बुद्धि के महात्म्य को प्रकट करने के लिए पूछने रूप क्रिया में प्रवृत्त हुए 14 पूर्वी को भी उत्तर देता है। 14 पूर्वों का जिसका ज्ञान है, ऐसे 14 पूर्वियों के भी किसी, वो कोई पूछेंगे, पूछने रूप क्रिया में प्रवृत्त हुए 14 पूर्वी कुछ पूछेंगे, तो ये 6 मास के उपवास में भी उनका वो बुद्धि का महात्म्य प्रकट है, वो उसका उत्तर दे सकेंगे। हम देखते हैं ना, ये उपवास करने पर वो तो कृश होता है या कुछ बुद्धि काम नहीं करती, वैसा नहीं उनके होता है। विनय से 12 अंगों को पढ़ने वाले के उत्पन्न हुई प्रज्ञा का नाम वैनयिक है। अथवा परोपदेश से उत्पन्न बुद्धि भी वैनयिक कहलाती है, यानी गुरु के उपदेश से जो प्राप्त हुई है उसको भी वैनयिक कहते हैं। गुरु के उपदेश के बिना तपश्चरण के बल से उत्पन्न बुद्धि कर्मजा है। ये बिना तपश्चरण नहीं लगा ना था, उपदेश के बिना, और किस बल से उत्पन्न हुए, तपश्चरण के बल से उत्पन्न हुई बुद्धि कर्मजा है। अथवा औषध सेवा के बल से उत्पन्न बुद्धि भी कर्मजा है। अपनी अपनी जाति विशेष से उत्पन्न बुद्धि पारिणामिका कही जाती है। ये हमने 4 प्रकार देखे, उत्पत्ति की, वैनयिक, हाँ कर्मजा और पारिणामिका। शंका, तीर्थंकर के मुख से निकले हुए बीज पदों के अर्थ का निश्चय करने वाले वृषभ सेनादि गणधरों की प्रज्ञा का कहाँ अंतर्भाव होता है? तीर्थंकर के मुख से जो बीज पद निकले हैं, उनके अर्थ का निश्चय जो करते हैं गणधर जो है, तो उनकी कौन सी प्रज्ञा है, उसका समाधान, उसका पारिणामिक प्रज्ञा में अंतर्भाव होता है, क्योंकि वह विनय, उत्पत्ति और कर्म के बिना उत्पन्न होती है। शंका, पारिणामिक और औत्पत्तिक प्रज्ञा में क्या भेद है? जाति विशेष में उत्पन्न कर्मक्षोभम से आविर्भूत हुई प्रज्ञा, आविर्भूत यानी प्रकट हुई प्रज्ञा पारिणामिक है। क्या कहते हैं, जाति विशेष में उत्पन्न कर्मों कर्मक्षोभम से यानी कर्म के क्षोभम से आविर्भूत हुई प्रज्ञा, वो भी जाति विशेष की बात की, पारिणामिक है। नहीं नहीं नहीं, जाति यानी माता की लेना नहीं यहाँ, जाति विशेष यानी वो एक इंद्रियादि जाति हो ना, जाति विशेष ये गणधरों के होती है ना जाति विशेष। बेटे थे इसलिए नहीं, वृषभ सेनादि गणधर, कोई भी गणधरों की जो बुद्धि है वो कहाँ लगाना। आप क्या कहते हैं जाति विशेष का अर्थ, उसको तो कर्मक्षोभम कहना, जाति क्यों कहा। हाँ आप जाति विशेष का अर्थ नहीं कह रहे, कर्मक्षोभम का अर्थ बता रहे हैं। यहाँ जाति विशेष का अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। गणधर ये जाति विशेष हुआ, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर प्राकृत में तीसरी लाइन आदि विशेष लिखा है, वो जादी विशेष चाहिए। जादि विशेष जनित कम्मख ओ व सम उत्पन्ना पारिणामिया, ऐसे भी ले सकते हैं ना, जैसे संगी पंचमी वो जाति विशेष हुआ परिणामी की प्रज्ञा, यहाँ उसकी बात नहीं है, मगर पता नहीं जाति विशेष लिख तो लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कर्म का क्षोभ समय ना विशिष्ट है इसलिए यहाँ लिया। और कर्मजा में किसको लिया था, तपश्चरण के बल से जो उत्पन्न हुई थी उसको कर्मजा कहा था। शंका, इन प्रज्ञा श्रवणों में यहां किनका ग्रहण है। समाधान फिर पढ़ते, जाति विशेष में उत्पन्न कर्मक्षोभम से आविर्भूत हुई प्रज्ञा पारिणामिक है, और जन्मांतर में विनय जनित संस्कार से उत्पन्न प्रज्ञा उत्पत्ति की है, यह दोनों में भेद है। जन्मांतर यानी पूर्व भव, जन्मांतर का शब्दशः अर्थ होता है अन्य जन्म, परंतु अन्य जन्म के यहाँ तो पूर्व जन्म लेना, पूर्व का पूर्व भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व भव तो देव का है और उसके पूर्व भव मनुष्य का था, तभी उन्होंने ये सीखा था। वही नहीं किया ने गुरु के उपदेश से सीखा था और अब उसके संस्कार चल रहे हैं, नष्ट नहीं हुए हैं, तो उसको उत्पत्ति की कहेंगे। यह दोनों में भेद है। इन प्रज्ञा श्रवणों में यहाँ किनका ग्रहण है, चारों ही प्रज्ञा श्रवणों का ग्रहण है, क्योंकि प्रज्ञा ही है श्रवण जिनका, वे प्रज्ञा श्रवण है ऐसी निरुक्ति है। तो फिर वैनयिक प्रज्ञा श्रवणों का ग्रहण नहीं हो सकेगा, वैनयिक ने अभी जिन्होंने गुरु के द्वारा प्राप्त किया है। समाधान, नहीं, क्योंकि अदृष्ट और अश्रुत अर्थों में ज्ञानोत्पादन की योग्यता का नाम प्रज्ञा है, सो वह सर्वत्र पाई जाती है। अदृष्ट यानी नहीं देखा हुआ और अश्रुत यानी नहीं सुना हुआ, ऐसे पदार्थों में ज्ञानोत्पादन की योग्यता, जो सुना नहीं है फिर भी उसका ज्ञान कर लेना, गुरु ने तो वो एक्चुअल स्पष्ट करके नहीं बताया फिर भी उसके ज्ञान में आ जाना, उसको अश्रुत कहेंगे, और देखे नहीं है फिर भी। अभी तो लौकिक में भी होता है ना, कुछ चीज देखी नहीं है फिर भी उसके समझ में ये यही होना चाहिए, ऐसा निर्णय हो जाता है। तो अदृष्ट और अश्रुत ज्ञानोत्पादन की योग्यता नाम प्रज्ञा है, वह सर्वत्र पाई जाती है। शंका, गुरु के उपदेश से 14 पुरों का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रज्ञा श्रवण के अश्रुत अर्थ का ज्ञान कैसे कहा जा सकता है? क्या कहते हैं? जिसने 14 पुरों का ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त किया है, तो उसने सब कुछ सुनकर प्राप्त किया है, तो उसके लिए अश्रुत कहाँ रहा, ये प्रश्न है। नहीं, क्योंकि उसमें अवक्तव्य पदार्थ विषयक, अवक्तव्य वक्तव्य ने कहे जाना वो वक्तव्य कहते हैं। क्या नहीं बताया गया? नहीं वे नहीं 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 आप गलत अर्थ करें, बताया गया नहीं, जिसको बता नहीं जा सकता, जिसको वचन में कुछ कह नहीं सकते उसको अवक्तव्य कहते हैं। अवक्तव्य ने जो कथन में नहीं आ सकता, पदार्थ है उसके कथन नहीं कर सकते। जैसे आत्मा है, कथनचित वक्तव्य है ना, तो उसके बारे में कुछ बातें तो बता सकते, परंतु ऐसी कितनी बातें जो बता ही नहीं सकते, तो उसको अवक्तव्य कहते हैं। तो अवक्तव्य पदार्थ विषय ज्ञान के उत्पादन की शक्ति का अभाव होने पर समस्त श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति का विरोध होगा। क्या कहते हैं? गुरु के उपदेश भले वो प्राप्त करें, फिर भी ये अगर प्रज्ञा नहीं होगी, यानी जो शब्दों में जिसको नहीं कहा जा सकता, ऐसे अर्थ का यदि उनके ज्ञान नहीं होगा, तो समस्त श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं होगी। क्योंकि समस्त श्रुत ज्ञान तो बहुत है, परंतु शब्द तो लिमिटेड है, तो उन शब्दों के द्वारा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, ऐसे भी उनके ज्ञान होता है, तो यहाँ ये प्रज्ञा काम करती है। यहाँ असंयत प्रज्ञा श्रवणों का ग्रहण नहीं है। असंयत यानी अभी जो कोई देव में चले गए यहाँ 12 अंगों का पढ़कर, उनका यहाँ ग्रहण नहीं है। क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति आती है, इन प्रज्ञा श्रवण जिनों को नमस्कार हो, सर्वत्र जिन शब्द डालकर उनको नमस्कार किया। ये शंका समाधान हमने लिया था, फिर दोबारा पढ़ते। प्रज्ञा और ज्ञान के बीच क्या भेद है? गुरु के उपदेश से निरपेक्ष, यानी उसके उसमें गुरु के उपदेश की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञान की हेतुभूत जीव की शक्ति का नाम प्रज्ञा है, और उसका कार्य ज्ञान है। इस कारण दोनों में भेद है। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। नमो आकाशगामिनम, आकाशगामी जिनों को नमस्कार हो। आकाश में इच्छानुसार मानुषोत्तर पर्वत से घिरे हुए इच्छित प्रदेश में गमन करने वाले, ये लिमिट क्यों बताई? ये मनुष्य है ना, तो उसके आगे जा नहीं सकेंगे। भले मुनिराज है, भले कितनी रिद्धियां प्राप्त हो, फिर भी मानुषोत्तर पर्वत के उस पार जा ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत से घिरे हुए इच्छित प्रदेश में गमन करने वाले आकाशगामी हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ देव व विद्याधरों का ग्रहण नहीं है, ये जिनों की बात चल रही है, मुनिराजों की ही बात हो रही है। क्योंकि आकाश में गमन तो देव भी करते हैं, वो तो क्या मानुषोत्तर की क्या बात है, उसके उस पार भी जाते हैं। विद्याधर है वो मानुषोत्तर के अंदर ही अंदर, वो भी मनुष्य है ना, विद्याओं के साथ है, तो विद्याओं के द्वारा वे भी आकाश में गमन कर सकते हैं। ये आज हमें लगता है हम साइंटिस्ट हुए, विमानों का ये एरोप्लेन है वगैरह वगैरह, तो ये आजकल की देन है। तो पहले भी विद्याएं ऐसी थी कि वो आकाश में भी गमन करते थे, विद्याधर वगैरह तो है ही, उनके भी विमान होते थे। विमानों की क्या बात है, ऐसे रसायन, ऐसे केमिकल्स भी थे कि ये जो पैरों के तलवों के ऊपर लगाते थे, और आकाश में गमन कर सकते थे। ये आता है ना इनके, कौन से मुनि हुए जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में भी बहुत कुछ, पद्मनंद ने, पूज्यपाद, पूज्यपाद आचार्य, उनको भी वो विद्याएं मालूम थी। क्योंकि जिन्हें शब्द की अनुवृत्ति है, यानी देव विद्याधर भी, वो विमान वगैरह उनके होते हैं, विद्याओं के द्वारा भी जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं आकाश में से। ये विद्या सीखने से भी अन्य को भी प्राप्त हो गया, ऐसी कोई नहीं कि वो विद्याधर कुछ अलग जाति के होते हैं, वे भी मनुष्य है। तो उनकी अपेक्षा हम भूमि गोचरी है, वो रामायण में कहती ना, अरे ये तो भूमि गोचर है और हम तो विद्याधर है, ये हमसे कैसे लड़ सकते हैं, ऐसे रावण का पक्ष है। वो क्या समझते थे, हम तो विद्याधर है और ये भूमि गोचर, इन्हें भूमि पर चलने वाले हैं, इनको आकाश में गमन करने की कोई विद्याएं नहीं है, तो हम उनसे श्रेष्ठ है, ऐसे वहां आता था। देखो शंका, आकाश चारण और आकाशगामी के क्या भेद है, पहले भी ये प्रश्न आया था ना, आकाशगामी और आकाश चारण, पहले भी यही शंका आई थी पृष्ठ 80 पर, आकाश चारण और आगे कहे जाने वाले आकाशगामी के क्या भेद है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वही प्रश्न यहाँ फिर पूछा है, आकाश चारण और आकाशगामी के क्या भेद है, इसका उत्तर कहते हैं, चरण, चारित्र, संयम, पाप क्रिया निरोध, इनका एक ही अर्थ है, इसमें जो कुशल अर्थात निपुण है वह चारण कहलाता है। चरण यानी चारित्र, संयम पाप का निरोध, और उसमें जो कुशल है वे चारण। तप विशेष से उत्पन्न हुई आकाश स्थित जीवों के परिहार की कुशलता से जो सहित है वे आकाश चारण हैं। आकाश में भी जो जीव रहते हैं उनकी विराधना किए बिना, यानी उनका वो जीवों के परिहार की कुशलता है, वो आकाश चारण है। आकाश में गमन करने मात्र से संयुक्त आकाशगामी कहलाता है। ये सामान्य से आकाशगामित्व तो देवों के वगैरह अन्य जीवों को भी होता है। अब ये मुनिराज है तो सामान्य आकाशगामियों से भी ये कुछ विशेष है। तो सामान्य आकाशगामित्व की अपेक्षा जीवों के वध परिहार की कुशलता से विशेषित आकाशगामित्व के विशेषता पाई जाने से दोनों में भेद है। सामान्य आकाशगामित्व तो ये पंछी भी आकाश में से गमन करते हैं, देव भी जाते हैं, विद्याधर भी जाते हैं, और ये मुनिराज कैसे, ये पूरा एक शब्द लेना, इन्वर्टेड में डालना। देखो, जीवों के वध परिहार की कुशलता से विशेषित आकाशगामित्व, ये मुनियों का विशेषण है, उसके कारण इनके विशेषता पाए जाने से दोनों में भेद है। तप के बल से आकाश में गमन करने वाले इन जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। ये आकाश में गमन कर सकते हैं, उनके तप का बल है इसलिए। आगे, नमो आशी विषाणम, आशीर्विष जिनों को नमस्कार हो। अविद्यमान अर्थ की इच्छा का नाम आशीष है। क्या कहते हैं, अविद्यमान अर्थ, यानी जो अभी है नहीं अपने पास, वो अविद्यमान अर्थ पदार्थ और उसकी इच्छा, उसका नाम है आशीष। आशीष है विष जिनका, वे आशीर्विष कहे जाते हैं। मर जाओ इस प्रकार जिसके प्रति निकला हुआ जिनका वचन उसके मारने में निमित्त होता है, भिक्षा के लिए भ्रमण करो ऐसा वचन भिक्षार्थ भ्रमण करने में निमित्त है, सिर का छेद हो ऐसा वचन सिर के छेदने में निमित्त होता है, वे आशीर्विष नामक साधु है। यानी उनका वचन ही विष जैसा काम कर रहा है ना। वो करेंगे नहीं, परंतु उनमें ऐसी ये रिद्धि प्राप्त है। शंका, वचन के विष संज्ञा कैसे संभव है? हम ये तो स्टोरीज सुनते ना, उन्होंने शाप दिया, ये अन्य मतियों में आता है, ये ऐसा ऋषि आए थे, मुनि आए थे, वो दुर्वास बहुत क्रोधी थे, उन्होंने शाप दिया। हाँ, तो वचन के विष संज्ञा कैसे संभव है? समाधान, विष के समान विष है, इस प्रकार उपचार से वचन को विष संज्ञा प्राप्त है। विष के समान वचन है ना वे, आशीष है अविष अर्थात अमृत जिनका, वे आशीर्विष है। ये दोनों प्रकार से ले, पहले आशीष है विष जिनका, अब अमृत जिनका। सावर अथवा जंगम विष से पूरित जीवों के प्रति निर्विष हो, इस प्रकार निकला हुआ जिनका वचन, यानी कोई विष से पीड़ित है, विष बाधा हो गई है, और मुनिराज ने बताया निर्विष हो जाओ, तो उनका वचन उन्हें जिलाता है। यानी मरदे हुए को जिंदा करता है ऐसा नहीं कहा, जिलाता है ना, वो निर्विष कर देता है, विष रहित हो जाते हैं। व्याधि वेदना और दारिद्र्य हुआ है, दारिद्र्य आदि के विनाश हेतु निकला हुआ जिनका वचन उस कार्य को करता है, वे भी आशीर्विष है, यह सूत्र का अभिप्राय है। यानी केवल वो शाप देने रूप वो विष का काम करते, वो ऐसा नहीं है, जो विष सहित है उसको भी निर्विष कर देवे, जिसको हम आशीर्वचन कहते ना, आशीर्वाद जिसको कहते हैं, यानी व्याधि से दूर हो जावे, वेदना से दूर हो जावे, उनका दारिद्र्य चल जावे, उस हेतु कोई जिनका वचन उस कार्य को करता है। तप के प्रभाव से जो इस प्रकार के शक्तियुक्त वचनों से संयुक्त हो, ऐसे हो करके जीवों के निग्रह व अनुग्रह को नहीं करते हैं, ये बात महत्व की है। ऐसी शक्ति होने पर भी निग्रह और अनुग्रह, अनुग्रह करना है किसी के प्रति उपकार करना, और निग्रह करना है उसका बुरा सोचना, वो जो नहीं करते वे आशीर्विष ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति है, जिन यानी मुनिराज तपोधनम उन्हीं को कहते हैं जिनके शत्रु मित्र आदि के प्रति समानता होती है, सुख दुख मरण जीवन आदि, हमने देखा था ना प्रवचन सार में, बात बहुत विस्तार से देखी हमने, तो उनको ऐसा किसी को वो दुर्वचन कह के तेरा बुरा हो जाए तू मर जाए ऐसा थोड़ी कहने वाले, या किसी को जिंदा करने के लिए वो काम करते रहेंगे ऐसी भी बात नहीं, उनके वचनों में शक्ति है तो दिन भर वही काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो तप के कारण ऐसी रिद्धियां प्राप्त होती है, परंतु उसका कोई यूज नहीं करते हैं, ये बात यहां बताना चाहते। तो ऐसे शक्तियुक्त वचनों से संयुक्त हो करके जीवों के निग्रह अनुग्रह को नहीं करते हैं, वे आशीर्विष है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति है। अब ये निग्रह और अनुग्रह करेंगे तो क्या बिगड़ेगा? तो और निग्रह व अनुग्रह द्वारा क्रमशः क्रोध व हर्ष का दिखलाने वालों के जिनत्व संभव नहीं है। यानी जो किसी के प्रति निग्रह करे, किसी के प्रति अनुग्रह करे, तो ये उनका क्रोध समय, कोई निग्रह करे तो उनका क्रोध है, ये सिद्ध होता है, और जो अनुग्रह करेगी तो उसके तो राग है, वहां हर्ष है उसके प्रति, तो उनके जिनत्व ने मुनित्व भी संभव नहीं है, क्योंकि विरोध है। इन शुभ व अशुभ लब्धि सहित आशीर्विष जिनों को नत होता हुआ पृथ्वी तल पर गिरकर वंदना करता हूं, यह कहने का तात्पर्य है। यह कृतिकर्म की बात चल रही ना, नमस्कार करने के, तो मुनिराजों के द्वारा अन्य रिद्धिधारी मुनियों को भी, वो भी भूमि पर पतित होकर कहा, गिर कर, साष्टांग नमस्कार जिसको, सभी अंग जमीन को टेक कर स्पर्श करके नमस्कार करते हैं। नमो दिट्ठी विषाणम, दृष्टि विषय जिनों को नमस्कार हो। दृष्टि शब्द से यहाँ चक्षु और मन का ग्रहण है, क्योंकि उन दोनों में दृष्टि शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है, उसकी सहचरता से क्रिया का भी ग्रहण है, उसके साथ होने वाली जो क्रिया है उसका भी यहाँ ग्रहण है। रुष्ट होकर वह यदि मारता हूँ इस प्रकार देखता है, सोचता है, वह क्रिया करता है तो मारता है, तथा क्रोध पूर्वक अवलोकन से अन्य भी अशुभ कार्य को करने वाला दृष्टि विषय कहलाता है। पहले तो वचन के द्वारा कहा था, अभी नजर से ही वो करेंगे तो वहां सामने वाले की वैसी वैसी बातें होगी, इसको दृष्टि विषय कहा। जैसे वहां भी उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं करेगा वैसे यहां भी नहीं होगा, मगर उनमें वो शक्ति उत्पन्न हुई है ये बताने के लिए दृष्टि विषय कहा। या इसी प्रकार दृष्टि अमृतों का भी लक्षण जानकर कहना चाहिए, तो उनके दृष्टि मात्र से, उनके मन में आने मात्र से सामने वाले का तो जो विष वाला भी निर्विष हो जावे, या अन्य अन्य भी बातें बने, जैसे हमने वचन में देखा था वैसे यहां भी समझना। जिनों को इसकी अनुवृत्ति आती है, क्योंकि इसके बिना दृष्टि विषय सर्पों को भी नमस्कार करने का प्रसंग आता है। सर्पों में भी दृष्टि विषय है तो उनको भी नमस्कार करने का प्रसंग आएगा, इसलिए वे दृष्टि विषय जिनके पास है ऐसे जिनों को नमस्कार हो। इन शुभ व अशुभ लब्धि से युक्त, ये उनके पास लब्धि है, ये रिद्धिधारी तो उसके प्रति उनके कोई अहोभाव नहीं है और ना ही उन रिद्धियों का उपयोग करने की वो सोचते हैं कभी। हमें मालूम है विक्रिया रिद्धि प्राप्त ऐसे विष्णु कुमार मणि, उन्हें भी कोई ऐसा विकल्प नहीं आया था, अन्य किसी अवधि ज्ञानी ने जाना कि इनके ये रिद्धि प्राप्त है, उनके तो पता भी नहीं था ये रिद्धि प्राप्त हुई है। और संघ पर इतना बड़ा संकट आया था तो उनके पास विनती किया और फिर जाके उसको टालने के लिए उन्हें तो गृहस्थपन अंगीकार करना पड़ा, वस्त्र पहने ना, तो इतना सारा दीक्षा का छेद हो गया, फिर दोबारा दीक्षा ग्रहण की उन्होंने। तो ये मुनि अवस्था में इस प्रकार का कार्य भी नहीं होता है। इन शुभ व अशुभ लब्धि से युक्त तथा हर्ष व क्रोध से रहित, ये बात महत्व की है, क्योंकि वो सहित हो तो उसका यूटिलाइजेशन करे, तो उनके पास तो भीड़ ही लग जावे ना। छह प्रकार के ही दृष्टि विष जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। वो मन का भी लिया ना उसके साथ साथ, उग्र तप जिनों को नमस्कार ऊपर टाइम है क्या, हाँ 2 मिनट है। नमो उग्र तवाणम, उग्र तप जिनों को नमस्कार हो। उग्र तप रिद्धि धारक 2 प्रकार के होते हैं। ये उग्र तप यानी वो तो उस अर्थ समझ में आता है, उनका उग्र ऐसा तप है, वो उग्रो तप, उसमें भी 2 प्रकार है, उग्रोग्र तप रिद्धि धारक और अवस्थित उग्र तप रिद्धि धारक। उग्रोग्र है जिसका तप उग्र उग्र होता जाता है उसको उग्रोग्र कहा, और अवस्थित यानी वैसा कि वैसा अवस्थित उग्र तप रिद्धि धारक। उनमें जो एक उपवास करके पारणा कर 2 उपवास करता है, पश्चात फिर पारणा कर 3 उपवास करता है, इस प्रकार एक अधिक वृद्धि के साथ जीवन पर्यंत, क्या कहते हैं, 1 उपवास फिर पारना, 2 उपवास पारना, 3 उपवास पारना, 4 उपवास पारना, 5 उपवास पारना, 6 उपवास पारना, 7 उपवास पारना, 8 उपवास पारना, ऐसे कब तक, जब तक जिंदगी है तब तक, जीवन पर्यंत, और वो भी कैसे, 3 गुप्तियों से रक्षित होकर उपवास करने वाला उग्रोग्र तप रिद्धि का धारक है। इसके उपवास और पारणाओं को लाने के लिए सूत्र भी यहां बताएंगे। ये सूत्र और विशेषार्थ कल ही पढ़ना पड़े, क्योंकि ये तो डिटेल में है और फिर उसकी गणित भी आगे समझाया है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो प्रेरणा में।